गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने 16वां अध्याय में जैविक संसाधन में पशु संसाधन, जैविक संसाधन का जो हिस्सा है, अध्याय का नाम जैविक और अजैविक संसाधन है। जैविक संसाधनों में सभी सजीव घटकों को सम्मिलित किया गया, उनमें पशु संसाधनों के बारे में हमारी चर्चा हुई थी कि विश्व के 20% पशु भारत में पाए जाते हैं और पशुओं का जो महत्व के रूप में बताई थी आपको 6-7 बिंदु, यानी पशुओं का कृषि कार्यों में उपयोग किया जाता है और पशुओं के मलमूत्र और गोबर से खाद वगैरह बनाई जाती है और इन से जो चमड़ा प्राप्त होता है उनकी खालें, इनसे ऊन प्राप्त होती है, पशुओं का उपयोग यातायात के रूप में भी काम में आते हैं, ये इनसे मांस भी प्राप्त होता है इत्यादि, ये सारे इनके महत्व है। उसके बाद में भारत में पशुपालन की दृष्टि संपूर्ण भारत को 4 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी जलवायु वाले प्रदेश जिसमें हमारा ये पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान वगैरह ये आ जाते हैं, पूर्वी एवं यहाँ जो हमारे जो हम मुख्यतः जिन पशुओं का पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं, वो इस उत्तरी पश्चिमी जलवायु प्रदेश वाली श्रेणी में आते हैं, पूर्वी एवं पश्चिमी तट क्षेत्र वाले पशुपालन क्षेत्र और चौथा जो पशुपालन की दृष्टि से है वो है चौथा क्षेत्र मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। इसके बाद में प्रमुख पालतू पशुओं की जो संख्या थी वो 2012 के आंकड़ों के अनुसार 51.21 करोड़ थी और हमारे देश में प्रमुख पालतू पशुओं में जैसे गाय बैल है, भैंसे हैं, बकरियां, भेड़ें, ऊंट और अन्य पशुओं में घोड़ा है, ये खच्चर है इत्यादि, मुर्गी पालन वगैरह ये सब। तो गायों में भारतीय नस्ल की गायों का दूध सर्वश्रेष्ठ माना गया है, वैज्ञानिक अनुसंधानों में भी ये प्रमाणित हो चुका है और इसके अलावा भारत का विश्व में गाय और बैल पालन की दृष्टि से विश्व में ब्राज़ील के बाद द्वितीय स्थान है भारत का गाय पालन की दृष्टि से, स्थान की बात की जाए तो। और भैंसों में भी विश्व में भारत भैंस पालन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है, सर्वाधिक भैंसें पाली जाती है यूँ कह सकते हैं, और गाय की तुलना में भैंस के दूध में जो वसा अधिक होती है वो गाढ़ा भी होता है अधिक है। बकरियाँ जो भारत में, बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है, बकरी से दूध व मांस दोनों के उद्देश्य के लिए पाली जाती है बकरी, और बकरी के बाद में जो भेड़ है वो विश्व में भेड़ पालन में भारत का चीन के बाद द्वितीय स्थान है, गाय पालन की दृष्टि से ब्राज़ील के बाद द्वितीय स्थान है और भैंस पालन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। इसके बाद में ऊँट जो है, जिसे हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते आए हैं, इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं और इस के जो पाँव हैं वो गद्दीदार होते हैं, रेत में धंसते नहीं हैं, इसलिए रेगिस्तान में तेज़ी से दौड़ सकता है, इसीलिए इसको रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं। यानी बाकी कोई भी पशु धावक दृष्टि से, दौड़ने की दृष्टि से, चलने की दृष्टि से ऐसे रेतीले धोरों पर इतनी तेज़ गति से चल नहीं पाता है, इतना लंबी दूरी तय नहीं कर पाता है। ये ऊँट है जिसके पाँव गद्दीदार होने के कारण रेत में धंसते नहीं हैं और बड़ी तेज़ गति से और बहुत लंबी दूरी तय करने की क्षमता होती है। और ये पेड़ के पत्ते हैं वगैरह, झाड़ियाँ, इनको खा पी कर अपना पेट भरता है और ऊँट की जो चमड़ी है वो मोटी होती है, इसलिए इसका पसीना बहुत कम आता है, इसलिए ऊँट को जल की आवश्यकता कम होती है। चमड़ी मोटी होने के कारण पसीना कम आता है, पसीना कम आने के कारण ऊँट को जल की आवश्यकता कम होती है। ऊँट के शरीर में एक कुबड़ भी होती है जिसमें चर्बी एकत्रित रहती है और इस चर्बी से जल पूर्ति कर लेने की क्षमता इस ऊँट में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, अर्थात ऊँट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, इसलिए गर्म एवं शुष्क भागों में आसानी से पाला जाता है ऊँट। और ये भारी बोझा ढोने के काम आता है और खेती करने के भी काम आता है। मालवाहक कोई भारी वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जानी है तो ऊँट का उपयोग, सवारी के रूप में ऊँट का उपयोग, कृषि कार्यों में ऊँट का उपयोग, पानी लाने हेतु भी ऊँट का उपयोग, रेतीले मरुस्थल में परिवहन के साधन के रूप में ऊँट का और कोई विकल्प नहीं है। और ऊँट में एक और विशेषता होती है जो आपको बताऊँ मैं, कि ऊँट में एक बड़ी अद्भुत क्षमता होती है, वर्षों बाद भी ये जिन जिन मार्गों से गुजरा है, जहाँ जहाँ से होकर गुजरा है, या जहाँ भी इसने मतलब मारवाड़ी में कहें तो जो इसको पाला पोसा है या इसको मतलब चारा वगैरह डाला है, तो इसको याद रखने की, मार्ग याद रखने की अद्भुत क्षमता होती है ऊँट में, रास्ता याद रखने की क्षमता जो है। इसलिए भटकते इनमें में ऑटोमेटिकली एक कुदरती क्षमता होती है कि ये उस रेगिस्तान में कोई फिक्स मार्ग नहीं होते रेतीले टीलों में, फिर भी ये अपने जिस मतलब स्थानों की ओर जाना चाहते हैं तो वो इनको इनके अंदर मार्ग याद रखने की अद्भुत क्षमता होती है। और भारत में विश्व के 2.4% ऊँट पाले जाते हैं पूरे विश्व के, और यहाँ कुल जो 4 लाख ऊँट है आंकड़ों के मुताबिक, उसमें 50% से अधिक अकेले तो केवल राजस्थान में ही पाले जाते हैं। वैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी पाले जाते हैं। भारत में एक कुबड़ वाला ऊँट पाया जाता है या पाला जाता है, जबकि अरब देशों में 2 कुबड़ वाले ऊँट भी पाए जाते हैं। और अन्य पशुओं में तो मैंने आपको गाय बैल का जिक्र कर लिया, ब्राज़ील के बाद दूसरा स्थान भारत का भैंस पालन की दृष्टि से, विश्व में प्रथम स्थान भारत का बकरी इको गरीब की गाय की भी संज्ञा दी गई है। और बकरी पालन का जो उद्देश्य है, बकरी से दूध व मांस दोनों प्राप्त किए जाते हैं। और भेड़ पालन की दृष्टि से भी भारत चीन के बाद द्वितीय स्थान रखता है। और ऊँट के बारे में आपको थोड़ा विस्तृत रूप से बता दिया, पाठ्य पुस्तक में भी इसका विस्तृत वर्णन है, प्रश्न भी बनता है। अन्य पशुओं में घोड़े, सुअर, मुर्गी वगैरह ये बता दिए। और अब प्रश्न उठता है, एक बड़ा प्रश्न बनेगा कि भारत में पशुधन की कमजोर स्थिति के कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से कारक उत्तरदायी है, भारत में पशुधन कमजोर होने के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी है या पशुधन की कमजोर स्थिति के क्या कारण है, प्रश्न बनेगा। भारत में इनकी इनकी यानी पशुओं की कमजोर स्थिति के कारणों का वर्णन, तो 4 प्रमुख कारण है। नंबर 1, प्रश्न पुनः सुन लीजिएगा, भारत में पशुधन के कमजोर स्थिति के कारण, पशुधन कमजोर स्थिति के कारणों, नंबर 1 पौष्टिक आहार व हरे चारे की कमी, नंबर 2 अच्छी पशु नस्लों का अभाव, नंबर 3 पशुओं की बीमारियां, नंबर 4 कृषकों की लापरवाही व अज्ञानता। वापस से चारों कारण सुन लीजिएगा, भारत में पशुधन के कमजोर होने के कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से प्रमुख कारण हैं। उत्तर होगा, भारत में पशुधन कमजोर होने के कई कारण हैं, जिनमें से नंबर 1 पौष्टिक आहार व हरे चारे की कमी। ये भारत की पशुपालकों के सामने बहुत एक बड़ी और विकट समस्या है कि पौष्टिक आहार अपने पशुओं को वो उपलब्ध नहीं करा पाते हैं उनकी आवश्यकता और उनकी क्षमता अनुसार, और दूसरा हरे चारे की कमी रहती ही रहती है। अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए अनुत्पादन मुख्य कार्य है और पशुपालन अनुत्पादन के बाद दूसरा गौण व्यवसाय है। पशुपालन भी भारत का अच्छा, भारतीय लोगों का अच्छा व्यवसाय है, लेकिन इससे भी प्रमुख है कृषि कार्यों में अनाज उत्पादित करना, क्योंकि जिस दर से भारत में जनसंख्या बढ़ रही है उसके भरण पोषण के लिए अन्न उत्पादन एक मुख्य कार्य है। उसके बाद में ये दूसरा कार्य है पशुपालन, और इसके अच्छे चारागाहों के अभाव में हरा चारा वर्ष भर ना मिल पाता है और पौष्टिक आहार भी नहीं मिल पाता है, इसलिए पशु कमज़ोर हो जाते हैं, उनसे दूध भी फिर कम प्राप्त होता है, मांस भी कम प्राप्त होता है। अच्छी पशु नस्लों का अभाव, अच्छी नस्ल के पशुओं की कमी के कारण भी भारत में पशुधन के कमज़ोर होने की होने का कारण है, एक उनमें से एक ये भी कारण है। भारत में खराब नस्लों के पशुओं की संख्या अधिक है और अच्छी नस्ल के पशुओं की संख्या कम पाई जाती है या कम है। इसी लिए भारत पशुओं में दूध और मांस का उत्पादन तुलनात्मक रूप से कम होता है। चौथा जो पशुधन कमज़ोर होने का कारण है भारत में, पशुओं की बीमारियाँ, जो भी एक अपने आप में एक बड़ा और प्रमुख कारण है। इसमें पशुओं के अंदर कई प्रकार की बीमारियाँ होती, सभी पशुओं को एक साथ चराने, एक ही बाड़े में बांधने, सड़ी गली चीज़ें खिलाने, गंदा जल पिलाने से अनेक पशु संपर्क जन्य रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। जैसे पशुओं में कई प्रकार के रोग होते हैं, जिनमें से चार रोगों के नाम मैं ले रहा हूँ, खुरपका, मुँहपका, जहरी बुखार, गलघोंटू, इनसे पशु कमज़ोर हो जाता है, वो अपना मतलब चारा नहीं चर पाता है, पानी नहीं पी पाता है, चल फिर भी नहीं पाता है, और धीरे धीरे पशु कमज़ोर होकर कई पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है इन रोगों से ग्रसित होने पर। छोटा एक प्रश्न बन सकता है, बहुत अति लघु उत्तरात्मक, कोई दो पशु रोगों के नाम, खुरपका, मुँहपका, जहरी बुखार, गलघोंटू, ये इस प्रकार के ये पशु रोगों के नाम हैं जो पशुओं में होते हैं। पशु संपर्क जन्य रोग भी है, एक पशु को हो रखा है तो दूसरे पशु इसके संपर्क में आते हैं, तो कुछ संक्रमित रोग जो होते हैं वो एक पशु से दूसरे पशु में भी फैलते हैं। चौथा और अंतिम कारण है भारत में पशुधन कमज़ोर होने की स्थिति के कारणों में, पहला पौष्टिक आहार व हरे चारे की कमी, दूसरा अच्छी पशु नस्लों का अभाव, तीसरा पशुओं की बीमारियां, जो बीमारियों के नाम बता दिए आपको, चौथा है पशुपालकों की अज्ञानता व लापरवाही। परंपरागत पशुपालन से पशुओं को एक ही बाड़े में बांधना, एक साथ चराना, पौष्टिक व पूर्ण आहार नहीं देना, ये सारी तो पुरानी पद्धति है पशुपालन की दृष्टि से। स्वच्छ जल के अभाव में भी पशु कमज़ोर हो जाते हैं। दुधारू पशुओं को हरे चारे के अभाव में फसलों के डंठल और भूसा खिलाने से दूध उत्पादन कम होता है। भारत में अब कई दुग्धशालाओं में वैज्ञानिक विधि से पशुपालन किया जाने लगा है, जिससे पशु स्वस्थ हष्टपुष्ट होने से दूध व मांस भी अच्छे देने लगे हैं। ये चार कारण हैं, चार कारणों से भारत में पशुधन कमज़ोर होने के प्रमुख चारों ही कारक उत्तरदायी है। चारों कारक बिंदुवार याद रखना, पौष्टिक आहार व हरे चारे की कमी के कारण भारत में पशुधन कमज़ोर होते हैं। नंबर दो, भारत में अच्छी पशु नस्लों का अभाव है, इसलिए भी भारत में पशुधन कमज़ोर है। नंबर तीन, पशुओं की कई बीमारियाँ हैं। भारत में परंपरागत पद्धति से पशुपालन किया जाता है, इसलिए पशु कई संक्रमित बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, उससे एक पशु के संपर्क में दूसरा पशु आने से वो भी ग्रसित होकर कई बीमारियां से ग्रसित होकर पशुओं की मृत्यु हो जाती है। चौथा और अंतिम कारण पशु धन कमज़ोर होने का, पशुपालक जितने भी भारत में पशुपालक है वो या तो अनपढ़ है, अर्थात यूँ कहे कि उनको पशुपालने का वैज्ञानिक ढंग से ज्ञान नहीं है, आधुनिक पद्धति से वो पशुपालन नहीं कर सकते हैं, और पशुपालक अपनी अज्ञानता के कारण लापरवाही भी बरतते हैं, इसलिए भारतीय पशु अन्य देशों की अपेक्षा कई इन प्रमुख कारणों से इन भारतीय भारत में पशुधन की स्थिति कमज़ोर है। और वैसे विश्व की 20% पशु भारत में पाले जाते हैं। ऊँटों के बारे में भी बताया कि विश्व के 2.4% ऊँट भारत में पाले जाते हैं, और भारत के जितने भी ऊँट हैं उन ऊँटों में 50% अकेले राजस्थान में पाए जाते हैं या पाले जाते हैं। इसके बाद में अगला एक प्रश्न बनेगा, जैविक संसाधन हमारे अध्याय का नाम है, जैविक एवं अजैविक संसाधन, अध्याय संख्या 16 हम पढ़ रहे हैं। जैविक संसाधनों में सभी प्रकार के सजीव घटकों को, सजीव भागों को सम्मिलित किया गया, उसमें पहला था पशुपालन। पहला पशुपालन जो हम पढ़ चुके हैं, इसमें एक ये बड़ा प्रश्न बन रहा था, बाकी छोटे छोटे प्रश्न बता दिए थे। एक प्रश्न और लघु उत्तरात्मक था, भारत में पशुपालन क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया, चार भागों में, हिमालय पर्वतीय पशुपालन क्षेत्र, नंबर दो उत्तरी पश्चिमी जलवायु पशुपालन क्षेत्र, नंबर तीन पूर्वी पश्चिमी तट जल पूर्वी पश्चिमी पशुपालन क्षेत्र, और चौथा मध्यम वर्षा वाले पशुपालन क्षेत्र। एक तो वो प्रश्न थोड़ा बड़ा था और लघु उत्तरात्मक था, एक ये लास्ट में भारत में पशुधन की स्थिति कमज़ोर होने के कारणों में चार कारण। अब जो अगला जैविक संसाधन आ रहा है वो है वन संसाधन। भारत के अंदर संपूर्ण वनस्पति प्राकृतिक संसाधनों में आता है। वन भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और इससे पूर्व जब हमने 15वां अध्याय पढ़ा था, संसाधन वर्गीकरण संरक्षण और पोषणीय विकास, तो उसमें भी बताया था संसाधन मुख्यतः दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। मानव को संसाधनों का जनक इसलिए कहा जाता है कि मानव कई संसाधनों का निर्माण भी करता है। तो वन एक प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और संसाधन का शाब्दिक अर्थ इससे पूर्व भी बता चुका हूँ, आज पुनः सुन लीजिएगा, ऐसे पदार्थ जिनसे मानव अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है या मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन सभी को संसाधन कहते हैं, उन सभी को संसाधन की संज्ञा दी गई है। वन संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन है और मनुष्य आदिकाल से, लंबे समय से, प्राचीन काल से, जब से पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ है तब से वनों पर आश्रित रहा है, और भारत में तो विशेष रूप से वृक्षों को देवता मानकर इनकी पूजा भी की जाती है, और वृक्षारोपण एक पुनीत और पुण्यात्मक कार्य माना जाता है। 1952 में भारत के अंदर वन नीति घोषित की गई, और 1952 में पर्यावरण से संबंधित, वन संसाधनों से संबंधित एक नीति, एक अध्यादेश लागू करके, नया नियम लागू करके एक इस प्रकार से वन नीति बनाई गई, और 1952 के बाद कि देश की कुल भूमि का 33% भाग पर वन होने अनिवार्य है ताकि उस देश के अंदर पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे। पारिस्थितिकी संतुलन हेतु किसी भी राष्ट्र की कुल भूमि का 33% भूभाग पर वन होने अनिवार्य है। विशेष रूप से ये भारत के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ मैं कि भारत में 1952 में वन नीति घोषित की गई, जिसके अनुसार देश की कुल भूमि के 33% भूभाग पर वन होने चाहिए, जबकि ऐसा है नहीं। वर्तमान में लगभग भारत की कुल भूमि के 20% हिस्से पे भी पेड़ पौधे वन संसाधन प्राकृतिक, ये पेड़ पौधे 20% भूमि पर ही है, इसीलिए भारत में ये जैविक असंतुलन उत्पन्न हुआ है, पारिस्थितिकी तंत्र में भी असंतुलन उत्पन्न है हुआ है। वन विनाश के कारण, वन विनाशों में 6 कारण है भारत में, प्रमुख रूप से भारत में घटते वन के लिए, घटते वन क्षेत्र के लिए या पेड़ पौधों की संख्या कम होने के लिए 6 कारण उत्तरदायी है। नंबर 1, कृषि हेतु भूमि की मांग निरंतर साल दर साल, दशक दर दशक बड़ी तेज गति से कृषि हेतु भूमि की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है, इसलिए भी वन क्षेत्र घट रहे हैं भारत में। और दूसरा, तीव्र औद्योगिकरण व शहरीकरण भी भारत में बढ़ रहा है, जैसे जैसे जिस गति से भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इस गति से भारत में उद्योगों की संख्या बढ़ रही है, शहरों की, नगरों की संख्या बढ़ रही है। घरेलू आवश्यकताओं के लिए वनों की कटाई की जा रही है भारत में, इसलिए भी भारत में वन क्षेत्र घट रहा है। चौथा, अनियंत्रित चराई। पाँचवा, स्थानांतरित कृषि प्रणाली। और छठा, अन्य कई कारण हैं, बहुउद्देश्य परियोजनाओं, बांधों का निर्माण और खनन क्षेत्र या दावाग्नि, जंगल में आग लग जाना, ये सारे कारण हैं जिनसे भारत में प्रति वर्ष या प्रति दशक भारत में वन क्षेत्र घटते जा रहे हैं। पुनः सुना दूं, भारत में वन क्षेत्र के लिए, प्रतिवर्ष घटते वन क्षेत्र के लिए कई कारण उत्तरदायी है, जिनमें नंबर 1, कृषि हेतु भूमि की मांग में वृद्धि, अर्थात पेड़ पौधों की कटाई करके कृषि हेतु भूमि को उपयोग में ले रहे हैं। दूसरा, भारत में तीव्र गति से उद्योग और शहरीकरण। तीसरा, घरेलू आवश्यकताओं के लिए वनों की कटाई। चौथा, अनियंत्रित चराई। पाँचवा, स्थानांतरित कृषि प्रणाली। और छठा, अन्य कारण जिनमें मैंने आपको बताया, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना जिनमें बांध वगैरह बनाना है, बढ़ता खनन क्षेत्र, वृक्षों में भी बीमारी लग जाना, दावाग्नि, जंगल में आग लग जाना आदि कारणों से वन नष्ट होने से वन क्षेत्र तीव्रता से घटता जा रहा है। अब अगला बिंदु होगा अपने भारत में वनों का वितरण। वितरण हम बाद में, इसके बारे में बाद में अध्ययन करेंगे, ये थोड़ा